हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्योंकि अमन अब आज़ाद हो चुका था और आज़ाद होने के बाद वो धीरे धीरे तारा की ओर बढ़ने लगा था। तारा जैसे जैसे पीछे जा रही थी, अमन वैसे वैसे उसके करीब आ रहा था। और जैसे ही वो तारा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, अचानक तारा के शरीर में से उसे करंट सा लगा था। तारा पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि आखिरकार उसे इस तरह से करंट कैसे लग सकता था। तभी उसे अपने बच्चों का ख्याल आ गया था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वहीं अमन तारा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके अंदर अब पिशाच की शक्तियाँ थीं। उसने तारा को अपनी तीखी आँखों से अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था और उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ तारा के पेट पर ठहर गई थीं, क्योंकि तारा के पेट में जो जिन्नातों का वंशज था, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमन को तारा से दूर धकेल दिया था। पिशाच जो कि अमन के अंदर मौजूद था, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो इस तरह से तारा से नहीं लड़ पाएगा और उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था। क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुका था, इसीलिए इससे पहले कि तारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस पिशाच को बंद कर पाती, अमन गुस्से से वहाँ से उसी के कमरे की खिड़की से गायब हो गया था। जैसे ही तारा ने ये देखा कि अमन वहाँ से गायब हो गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्योंकि अमन पिशाच रूप में उसकी आंखों के सामने था, तो कम से कम तारा को इस बात की तसल्ली थी कि अमन सही सलामत उसके सामने है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब अमन पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था, तो इसका मतलब साफ था कि वो इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अगर अमन इस हालत में कहीं बाहर गया और उसे कोई इंसान मिल गया और उसने उस इंसान को अपना शिकार बना लिया, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती थी। और जिस इंसान का अमन खून पीता जाएगा, वो इंसान एक भयानक पिशाच बनता चला जाएगा, क्योंकि अमन द्वारा काटे गए किसी भी इंसान ने अगर किसी दूसरे इंसान को काट लिया, तो वो भी पिशाच बनता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब साफ था कि पूरी इंसानियत को खतरा था, और इस तरह से तो पूरी दुनिया खतरे में थी। तारा ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, और अभी वो सोच ही रही थी कि तभी जैसे ही अमन गायब हुआ, वैसे ही करिश्मा जी उन दोनों जिन्नातों को लेकर वहाँ आ गई थी। और जैसे ही जिन्नातों की दुनिया से आने के बाद अमरेंद्र जी ने तारा से पूछा, अमन कहाँ है, तब तारा ने थोड़ी सी घबराई हुई आवाज़ में कहा था, अमन सर मुझे चकमा देकर यहाँ से भाग गए हैं। क्या ये जैसे ही करिश्मा और अमरेंद्र जी ने ये सुना, वे दोनों ही हैरान हो गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, उनका बेटा इस तरह से गायब हो सकता था। तब करिश्मा जी थोड़ी सी कांपती हुई आवाज़ में बोली थी, लेकिन अगर इस तरह से अमन गायब हो गया, तो इससे तो इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, अब हम क्या करें। तभी तारा ने करिश्मा जी को सांत्वना देते हुए कहा था, माँ फिक्र मत कीजिए, मैं जाती हूँ और अमन सर को ढूंढ कर लाती हूँ। तब अमरेंद्र जी बीच में कूद पड़े थे और कहने लगे थे, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें हमने कहा था जब तक हम वापस ना लौटे, तब तक तुम्हें अमन का केवल ध्यान रखना है, तो तुमने उसके बंधन क्यों खोले, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिन जादुई बेड़ियों से हमने अमन को बांधा था, उनका इस्तेमाल सिर्फ 24 घंटे में एक ही बार किया जा सकता है, एक बार वे बेड़ियां खुलने के बाद अगले 24 घंटे हमें इंतजार करना होगा, तो तुम्हें अमन को नहीं खोलना चाहिए था। अमरेंद्र जी की बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें करिश्मा जी ने देख लिया था। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अगर तारा ने एक भी आंसू नीचे गिराया, तो उसका भेद उसके पति अमरेंद्र जी के सामने खुल जाएगा। तभी करिश्मा जी ने आगे बढ़कर तारा के कंधों को पकड़ते हुए कहा था, मेरी बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमन ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हम सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं और उसे ढूंढ कर लाते हैं। तब तक करिश्मा जी ने उन दो सफ़ेद जिन्नातों को कह दिया था, जब तक हम अमन को ढूंढ कर नहीं लाते, तब तक तुम हवन करने की तैयारी शुरू कर दो, और जिस भी सामान की ज़रूरत है वो सब सामान वहाँ रखकर पूजा करना शुरू कर दो, तब तक हम अमन को कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे। ऐसा कहकर करिश्मा जी तारा को सांत्वना देने लगी थी, और जल्दी ही वे लोग अमन को ढूंढने की योजना बनाने लगे थे। पहले तो उन्होंने ये तय किया था कि वे सभी एक साथ जाकर अमन को ढूंढेंगे, क्योंकि अमन इतना खतरनाक हो चुका है कि अगर कोई उसे अकेला मिल जाएगा, तो वो अमन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी तारा ने करिश्मा जी और अमरेंद्र जी से कहा था, मुझे लगता है कि हमें अमन सर को अलग अलग ढूंढना चाहिए, अगर हम इस तरह से एक साथ अमन सर को ढूंढने जाएंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो सकता है, और इतने में अमन ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये सोचकर जल्दी ही तारा, करिश्मा और अमरेंद्र जी अलग अलग दिशा में अमन को ढूंढने के लिए चले गए थे। वहीं दूसरी ओर मालिका इस बात को लेकर बार बार परेशान होती जा रही थी कि आखिरकार काली शक्तियों का मालिका में तुझसे क्या छिपा रहा था, लेकिन फिलहाल ये वक्त इन सब बातों का सोचने का नहीं था। अभी उसे काली शक्तियों के मालिक अमित का काम करना था, तो इसीलिए मालिका सीधा काली शक्तियों के मालिक अमित के बने हुए जादुई हवेली में पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो वहां गई, उसने देखा कि वो डायन आराम से बड़े से सोफे पर बैठी हुई अंगूर के गुच्छे खा रही थी। जैसे ही मालिका ने ये देखा, वो बड़ी बुरी तरह से चिढ़कर रह गई थी। और अपना गुस्सा अपने मन में दबाते हुए वो बड़े ही विनम्र तरीके से उसके पास गई थी और कहने लगी थी, मालकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही मालिका ने उस डायन को मालकिन कहकर पुकारा तो डायन हवा में उड़ने लगी थी और कहने लगी थी, हाँ हाँ बोलो, क्या कहने आई हो तुम। तभी मालिका ने कहना शुरू कर दिया था, मालकिन मालिक ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और कहा है कि मैं आपको अच्छी तरह से तैयार कर दूं, तो इसके लिए आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ और वहाँ लेकर चलती हूँ। जैसे ही मालिका ने बड़े ही प्यार से ये कहा, डायन तुरंत खुश हो गई थी और कहने लगी थी, ठीक है, अगर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है तो मैं जरूर चलूंगी। ऐसा कहकर जल्दी ही वो फटाफट खड़ी हो गई थी और मालिका उसे अच्छी तरह से तैयार करके काली शक्तियों के मालिक अमित की बताई हुई जगह पर ले जाने लगी थी। वो जगह कोई और नहीं बल्कि वही पेड़ था जो अमन के ऑफिस से थोड़ी सी दूरी पर था, जहां पर वो डायन निवास किया करती थी। क्योंकि काली शक्तियों के मालिक अमित को उस डायन से पीछा छुड़ाने का रास्ता नजर आ गया था, तो इसीलिए जल्दी ही उसने उस पेड़ के पास एक ऐसा इंतजाम किया था कि जैसे ही वो डायन वहां उस पेड़ के पास आएगी तो उसके बाद वो वहां से कहीं भी नहीं जा पाएगी। तो यही सोचते हुए अमित ने जल्दी ही सारा इंतजाम कर दिया था और वहीं मालिका उस डायन को लेकर जैसे ही ऑफिस के बाहर गई तो वो डायन हैरानी से मालिका की ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, तो मुझे यहाँ क्यों ले आई हो। तब मालिका जल्दी से बात बदलते हुए बोली थी, वो मालकिन मालिक ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, आप तो जानती ही हैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर मालिक का ऑफिस है और आप मालिक से पहली बार यहीं मिली थी, तो इसीलिए मालिक यहीं पर कुछ प्लान कर सरप्राइज देना चाहते हैं। जैसे ही मालिका ने ये कहा वो डायन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी
और कहने लगी थी, ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और कहाँ है हमारे स्वामी, वे अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी मालिका ने अपने दांत भींचते हुए हल्की और धीमी सी आवाज में उसे कहा था, फिक्र मत कीजिए मालकिन, मालिक बहुत जल्द आ जाएंगे, बस आप तब तक मेरे साथ यहीं बैठकर इंतजार कीजिए। जैसे ही मालिका ने ये कहा वो डायन खामोशी से मालिका के साथ जाने लगी थी। मालिका ने उस डायन को उस पेड़ के बिल्कुल नीचे बिठा दिया था, लेकिन काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस पेड़ को एक बड़े ही खूबसूरत छोटे से 5 सितारा होटल में बदल दिया था और जितने भी ऑफिस आने जाने वाले लोग थे उन्हें तो वहां पर सिर्फ एक सामान्य पेड़ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन केवल उस डायन को वहां उस पेड़ की जगह एक छोटा सा होटल दिखाई दे रहा था। सो जैसे ही मालिका ने उस डायन को छोटे से होटल में बिठाया तो वो मालिका को बड़े ही रौब वाले अंदाज में बोली थी, ये सब क्या है, तुमने हमें इस होटल में क्यों बिठाया है, हम अपने महल में भी इंतजार कर सकते थे और यहाँ तो पहले एक पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ कहाँ गया। तब मालिका जल्दी से बोली थी, वो मालकिन यहाँ पर अब एक बिल्डर ने उस पेड़ को कटवाकर एक छोटा सा होटल बना दिया है जिससे ऑफिस में आने जाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर यहाँ आकर खाना पीना खा सकें। तब वो डायन कुछ सोचते हुए बोली थी, अच्छा, बस करो, ज्यादा मत बोलो और मेरे स्वामी को बुलाओ जल्दी से, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मालिका अपने गुस्से को दबाते हुए बोली थी, मालकिन आप परेशान मत होइए, और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लीजिए, मालिक आते ही होंगे। जैसे ही मालिका ने ये कहा वो डायन एक बार फिर शांत हो गई थी और काली शक्तियों के मालिक अमित के आने का इंतजार करने लगी थी। और अभी कुछ ही समय हुआ था कि काली शक्तियों का मालिक अपने हाथ में एक बड़ा ही खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां आ गया था और जैसे ही डायन ने उसे देखा वो तुरंत उठ खड़ी हुई थी और दौड़कर अमित के गले लग गई थी और कहने लगी थी, स्वामी आप आ गए, स्वामी मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी काली शक्तियों के मालिक अमित ने उस डायन के बालों को अच्छी तरह से पकड़ते हुए कहा था, मेरी अर्धांगिनी, तुम नहीं जानती जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मैं कितना ज्यादा धन्य हो चुका हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ, उसके लिए तुम्हें वहाँ जो होटल का खूबसूरत कोना दिखाई दे रहा है ना, तुम जाकर उस कोने के पास खड़ी हो जाओ। जैसे ही काली शक्तियों के मालिक अमित ने उस छोटे से होटल में बने कोने की ओर इशारा किया तब वो डायन बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप जाकर वहां खड़ी हो गई थी और वहां खड़ी होकर अमित ने उसे कहा था, तुम अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला लो, इस तरह से करके दीवार पर लगा दो। उसने वैसा ही किया था। तब अचानक अमित ने एक मंत्र पढ़कर उस डायन की ओर फूंका था और देखते ही देखते जादुई रस्सी के द्वारा उस डायन के हाथ और पैर उस कोने में ही बंद गए थे। जैसे ही उस डायन को ये सब कुछ समझ में आया कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और गुस्से से अमित की ओर देखते हुए बोली थी, ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हो स्वामी तुम। अमित जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा, बस कर डायन बस कर, तूने बहुत मुझे सता लिया है, बहुत तूने मेरा फायदा उठा लिया है, अब बस और नहीं। तुझे क्या लगा था कि मुझे तेरी हकीकत नहीं पता, तू कौन है ये कौन नहीं है, तो यहाँ पर मेरी शक्तियाँ मेरी उम्र खान के लिए आई हैं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और आज मैं तुझे काली शक्तियों के मालिक अमित को धोखा देने की सजा दूंगा। ऐसे कहते हुए काली शक्तियों के मालिक अमित ने एक के बाद एक 2 से 3 मंत्र और पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार दी थी और देखते ही देखते अचानक से उस डायन के शरीर जलने लगा था और जो जादुई होटल उस डायन को दिखाई दे रहा था धीरे धीरे उस पर से भी पर्दा हट चुका था और उसे एहसास हुआ था कि जिस कोने में वो जादुई रस्सी के द्वारा बांधी हुई खड़ी हुई है वो कोना कुछ और नहीं बल्कि उस बड़े से पेड़ का तना है जिस पेड़ में वो रहा करती थी।
अब उस डायन को यकीन हो चुका था कि अब वो नहीं बचने वाली है। जल्दी ही धीरे धीरे करके उसका पूरा शरीर चलने लगा था। उस डायन की आंखों में अजीब तरह की चमक थी। जैसे ही अमित और मालिका ने ये देखा कि वो डायन बड़ी ही अजीब नजरों से अमित को देख रही थी, तब अचानक उसका शरीर मिटता हुए लास्ट में उसका मुंह ही बचा था। और तब उस डायन ने अमित से कहा था, मैं लौट कर आऊंगी। ऐसा कहकर उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा एकदम गायब होकर उसी पेड़ के तने में जा मिली थी जिस पेड़ में वो निवास किया करती थी। जैसे ही अमित ने ये देखा, उसने राहत की सांस ली थी और तब वो मालिका के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा था।